नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पहलगाम आतंकी हमले की आज पहली बरसी है। पूरा देश इस हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आज ही के दिन आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। इनमें अधिकतर लोग पर्यटक थे। इस हमले के जवाब में सेना ने पिछले वर्ष 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सेना ने आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि जब मानवता की सीमाएं पार होती हैं तो जवाब निर्णायक होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस बीच ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूरोपीय संघ ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। सरकार ने कहा है कि देश में तेल और गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने देश में एलपीजी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल और डीजल की सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है।
डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई नॉर्मल है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। लगभग 94% सिलेंडर्स की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है। कल 45 लाख के करीब बुकिंग हुई, जिसके सापेक्ष लगभग 51 लाख डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की संयुक्त सचिव निधि केसरवानी ने बताया कि प्राकृतिक गैस तथा बायोगैस के अंतर्गत वितरण केंद्रों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में तेजी आई है। उन्होंने बताया कि 467 आवेदनों में से 157 वितरण केंद्रों के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 152 सीटों पर और तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में 16 जिलों में कुल 167 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 1478 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। उधर तमिलनाडु में 5,73,43,000 से अधिक मतदाता हैं। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में आज निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की और कांग्रेस अध्यक्ष से देश से माफी मांगने को कहा। अटल पेंशन योजना ने 9 करोड़ ग्राहकों के नामांकन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। पिछले वित्त वर्ष में 1 करोड़ 35 लाख लोगों ने नामांकन कराया। ये एक वित्त वर्ष में अब तक की सबसे अधिक नामांकन है। योजना वर्ष 2015 में सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ये योजना मुख्य रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवकों से एक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य के साथ अपने हर प्रयास को समायोजित करने का आह्वान किया है। देश के सिविल सेवकों को लिखे पत्र में श्री मोदी ने निरंतर सीखने और क्षमता निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सराहा। भारत और ब्रिटेन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में वर्तमान चुनौतियों से निपटने और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सहयोग पर सहमति जताई है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने ब्रिटेन में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल रिचर्ड नाइटन के साथ बातचीत की। दोनों पक्षों ने साइबर खतरों सहित वैश्विक मुद्दों से निपटने और शांतिपूर्ण तथा समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्रगति की प्रतिबद्धता दोहराई। बंबई शेयर के सूचकांक में लगातार 3 दिनों की बढ़त के बाद आज गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 757 अंक गिरकर 78,516 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 199 अंक की गिरावट के साथ 24,378 पर बंद हुआ। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 महिला T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात 9:30 बजे से जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला में 2-0 से आगे है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। राजस्थान अंक तालिका में चौथे और लखनऊ 9वें स्थान पर है। अपने पिछले दोनों मुकाबलों में मिली हार के बाद इन दोनों टीम की नजर प्रतियोगिता में वापसी करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।